ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बाद ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। ब्रुनेई के युवराज और प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मोहताजी बिल्लाह ने उनकी आगवानी की। प्रवासी भारतीयों ने भी श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली यात्रा है जो भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी भवन का लोकार्पण किया। चांसरी के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित भारतवंशियों से बातचीत भी की। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान की सराहना की। ब्रुनेई में भारतीयों के आगमन का पहला चरण 1920 के दशक में तेल की खोज के साथ शुरू हुआ। ब्रुनेई में करीब 14,000 भारतीय हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि श्री मोदी कल ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के साथ भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं और देश को आगे ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रपति कल सुबह महाराष्ट्र के लातूर जिला स्थित उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार भी रहेंगे। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में महिला आनंद मेलावा में भी भाग लेंगी। सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। परिषद ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार, डोनियर 228 विमान, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीद को मंजूरी दी। अलग अलग विभागों में भावी खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं जो कि भारतीय सेना के टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण की एक प्रमुख कड़ी साबित होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय और संचार मंत्रालय के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संचार मंत्रालय के संबंध में समीक्षा के दौरान पूंजीगत व्यय के विवरण और भारत नेट कार्यक्रम, 4G मोबाइल परियोजनाओं, स्वदेशी प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क तथा अन्य मोबाइल परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कैपेक्स योजनाओं पर चर्चा की गई। इस वित्त वर्ष में संचार मंत्रालय के लिए अनुमानित कैपेक्स बजटीय आवंटन 28,835 करोड़ रूपये है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। यह मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। मौके से एक सेल्फ लोडिंग राइफल SLR के साथ ही 2 अन्य राइफलें भी बरामद की गई हैं। वहीं राज्य के बीजापुर जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 13 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा के प्रावधान के साथ अपराजिता महिला और बाल विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में कहा कि विधेयक में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इस बीच कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ संदीप घोष को निलंबित कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज शाम उनका निलंबन आदेश जारी किया। इससे पहले डॉ संदीप घोष और 3 अन्य को 10 सितम्बर तक CBI हिरासत में भेज दिया गया था। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 6वें दिन निशानेबाजी में अवनी लखेरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 श्रेणी के फाइनल में 5वें स्थान पर रहीं। महिलाओं की शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव 5वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन थंगावेलू, शैलेश कुमार और शरद कुमार चुनौती पेश करेंगे। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण सहित 15 पदक लेकर 16वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।